भागवत सार की श्रृंखला में पांचवा स्कंध प्रारंभ हो चुका है। दूसरे अध्याय पर आज चर्चा है। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। पांचवें स्कंध में श्लोक ये पद्य में नहीं है, अर्थात एक गाने लायक श्लोक नहीं है। गद्य में लिखे गए जैसे लिखा जाता है, तो इसलिए कई श्लोक ऐसे होंगे जिनको गाया नहीं जा सकेगा, केवल पढ़ेंगे। उनमें से ये श्लोक भी ऐसे ही है। पांचवें स्कंद के प्रायः सभी श्लोक ऐसे होंगे, तो इसीलिए केवल इसको पढ़ेंगे और फिर इस पर चर्चा। श्री शुक उवाच, बोलिए। श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तद् अनुशासने वर्तमान अग्नित्रो जम्बुद्वीपो कसह प्रजा और सवत धर्मा वेक्षमाणः पर्यगोपायत। श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तत् अनुशासने वर्तमान अग्नित्रो जम्बुद्वीप कसह प्रजा औरसवत धर्मा वेक्षमाणः पर्यगोपायत। श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तत् अनुशासने वर्तमान अग्नित्रो जम्बुद्वीपो कसह प्रजा औरसवत् धर्मा वेक्षमाणः पर्यगोपायत। जी कोई बोलना चाहेंगे? श्री शुकदेव गोस्वामी उवाच बोले एवं इस प्रकार पितरी जब उनके पिता ने संप्रवृत्ते मुक्ति मार्ग ग्रहण किया तद अनुशासने उनकी आज्ञानुसार वर्तमानः वर्तमान आग्नित्र राजा आग्नित्र जम्बुद्वीप ओकसह जम्बुद्वीप के वासी प्रजा नागरिक औरस्वत अपने पुत्रों के समान धर्म धार्मिक नियम अवेक्षमाण कठोरता से पालन करते हुए परिय गोपायत पूर्णतया सुरक्षित। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेयध्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जाम्बू द्वीप के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। तात्पर्य, महाराज आग्नेयध्र ने अपने पिता महाराज प्रियव्रत की आज्ञानुसार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जम्बू द्वीप के वासियों पर राज्य किया। वर्तमान अश्रद्धा के युग में ये नियम पूर्णतया विरोधी हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि राजा नागरिकों की वैसे ही देखरेख करता था जिस प्रकार पिता अपने ही पुत्रों की करता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि उसने नागरिकों पर किस प्रकार धर्मावेक्षमाणा अर्थात धार्मिक नियमों की दृढ़ता से पालन करते हुए राज्य किया। किसी शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह देखे कि उसकी प्रजा धार्मिक नियमों का कठोर पालन करती है। वैदिक प्रदत्त नियमों वैदिक धर्म के नियम वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होते हैं। धर्म से तात्पर्य भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों से है। धर्म का पहला नियम है भगवान द्वारा निर्दिष्ट चारों आश्रमों के कर्तव्यों का पालन। व्यक्तियों के गुणों तथा कर्मों के अनुसार समाज को पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में और फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी में विभाजित किया जाता है। ये धार्मिक नियम है और राज्य के मुखिया का यह कर्तव्य है कि वे देखे कि उसके नागरिक इनका दृढ़ता से पालन करते हैं। उसे कोरे अधिकारी के रूप में कर्तव्य नहीं करना चाहिए, वरन उसे पिता के तुल्य होना चाहिए जो अपने पुत्रों का सदैव हितैषी होता है। ऐसा पिता इसका पूरा ध्यान रखता है कि उसके पुत्र अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं और कभी कभी वह उन्हें दंड भी देता है। उपयुक्त नियमों के विपरीत कलयुग में राष्ट्रपति तथा प्रधान शासकगण केवल कर संग्रह करने वाले हैं। इन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं रहती कि धार्मिक नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। सच तो यह है कि आज के प्रधान शासकगण सभी प्रकार के पापमय कार्यों का विशेष रूप से व्यभिचार, मादक द्रव्य सेवन, पशुवत तथा द्यूत क्रीड़ा का सूत्रपात करते हैं। आजकल भारत में ये पाप कर्म स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यद्यपि एक शताब्दी पूर्व ये चार दुर्गुण भारतीय परिवारों में पूर्णतया वर्जित थे, किंतु अब प्रत्येक भारतीय परिवार में इनकी पैंठ हो चुकी है। अतः वे धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर पाते। प्राचीन राजाओं के नियम के विपरीत आधुनिक राज्य कर वसूलने के विज्ञापन में अधिक और नागरिकों के धार्मिक कल्याण के प्रति कम ध्यान देते हैं। अब राज्य धार्मिक नियमों के प्रति उदासीन है। श्रीमद् भागवत की भविष्यवाणी है कि कलयुग में शासन द्वारा दस्यु धर्म चलाया जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोरों और उचक्कों द्वारा शासन। आधुनिक राज्यों के कर्णधार चोर और उचक्के ही हैं, जो नागरिकों की रक्षा करने के बजाय उनको लूटते हैं। यद्यपि चोर तथा उचक्के कानून की अवहेलना करके लूटपाट करते हैं, किंतु इस कलयुग में कानून बनाने वाले स्वयं नागरिकों को लूटते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। एक दूसरी भविष्यवाणी जिसे पूरा होना है वह यह है कि नागरिकों तथा शासन के पाप कर्मों से वर्षा दुर्लभ हो जाएगी। धीरे धीरे पूर्ण अनावृष्टि के कारण अन्न नहीं उत्पन्न होगा, लोगों को मांस तथा बीज खाना पड़ेगा और अनेक सत्वृत्ति वाले मनुष्य अपने अपने ग्रहों को त्याग कर देंगे, क्योंकि अकाल कर तथा अनावृष्टि से वे अत्याधिक तंग हो उठेंगे। संसार को ऐसे विनाश से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र आशा है। यह समस्त मानव समाज के वास्तविक कल्याण हेतु अत्यंत वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक आंदोलन है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सर्वशास्त्राद्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्नारुत्कंठयोऽस्फुरा। हरे कृष्ण। तो पांचवें स्कंद का प्रारंभ हुआ महाराज प्रियव्रत की कथा से। तो पहले स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन पहले राज्य किया उत्तानपाद ने, क्योंकि प्रियव्रत महाराज चले गए तपस्या करने के लिए, तो उन्होंने राज्य लिया नहीं, उत्तानपाद ने राज्य लिया। फिर उनके पुत्र ऐसे करते करते प्रचेताओं तक उनकी वंशावली चली। तो प्रचेताओं तक की जो वंशावली वो तानपाद महाराज की हुई, और क्योंकि उसके बाद प्रचेताओं के बाद कोई शासन करने वाला ठीक से रहा नहीं, और इसीलिए स्वयंभू मनु ने फिर से जाकर प्रियव्रत महाराज जो तपस्या में लगे हुए थे उनको फिर से कहा कि आप राज्य संभालिए, अब और कोई नहीं है। तो इतने लंबे समय तक प्रियव्रत महाराज ने तपस्या की, अर्थात उनके भाई राजा हुए, उसके बाद उनके पुत्र राजा हुए, उसके बाद उनके पुत्र कितने सारे वंश निकल गए, और फिर प्रियव्रत महाराज तपस्या कर रहे थे, और अब फिर उन्हें राज्य लेना पड़ा। काफ़ी समय तक उन्होंने राज्य किया और फिर उन्होंने त्याग दिया। तो अब इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में उनके पुत्र आग्निध्र का वर्णन है। वैसे चौथे स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि ऐसे राज ऋषियों का वर्णन सुनना चाहिए क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन हम महाराज आग्निध्र की कथा से देखते हैं कि वो भगवान के उतने महान भक्त नहीं है, और बड़े आसक्त पुरुष का उन्होंने आचरण किया। हालांकि धर्म का पालन उन्होंने किया, धार्मिक नियमों का, लेकिन उनकी जो चरित्र का वर्णन किया गया महाराज आग्निध्र का इस भागवत में, तो केवल एक ही श्लोक में कहा गया कि उन्होंने धर्म के अनुसार राज्य किया, अपने नागरिकों को पुत्र की तरह रखा, लेकिन बाकी सारा अध्याय उनकी काम वासना का वर्णन करता है, उनकी कामुकता का वर्णन करता है, उनके भगवान की भक्ति नहीं, वैकुंठ प्राप्त करने नहीं, उन्होंने कोई वैकुंठ प्राप्त नहीं किया, लेकिन उनके पितृलोक प्राप्त करने का वर्णन करता है, जो एक कर्मकांडी व्यक्ति का गति है। तो ऐसे लोगों का वर्णन भागवत में क्यों किया गया? अगर हाँ उन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया होता, भगवान के महान भक्त होते, तो हम उनके बारे में सुनते, या उन्होंने कई विशेष कार्य किए होते, लेकिन आप इस अध्याय में देखेंगे कोई विशेष कार्य का वर्णन ही नहीं किया उनके, केवल पहले श्लोक में वर्णन किया बस, बाकी सारे श्लोकों में कहा गया कि कैसे वो एक स्त्री के प्रति आसक्त हो गए, कैसे उसका गुणगान करने लगे, कैसे अपनी बुद्धि को खो बैठे, कैसे उससे आसक्त हो गए, और मृत्यु के समय भी उसका स्मरण करते हुए उस स्थान को गए जहां वो गई थी। तो ऐसे राजा का वर्णन क्या हम लोगों को सुनना चाहिए? इससे तो केवल काम वासना बढ़ेगी, इससे तो केवल भौतिकता बढ़ेगी। नहीं, ऐसे उदाहरण भागवत में इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम जानें कि जिस प्रकार इतनी अच्छी भक्ति की सुविधा मिलने पर भी महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं, मतलब स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और प्रियव्रत के पुत्र आग्निध्र, तो इतनी बड़ी स्थिति मिलने पर भी अगर कोई ध्यान पूर्वक उसका उपयोग नहीं करता तो कैसे नाश होता है, कैसे उसके जीवन का दुरुपयोग होता है, वो इस अध्याय से हम सीख सकते हैं। इसीलिए ऐसे वर्णन को भी कहा गया। वैसे आग्निध्र महाराज एक दृष्टि में बहुत शक्तिशाली राजा हैं, धर्म के अनुसार उन्होंने राज्य किया, अपनी प्रजा को बहुत अच्छी तरह से रखा, लेकिन फिर भी आसक्ति उनकी बनी रही। तो पहले 17 श्लोकों में आग्निध्र महाराज की आसक्ति का वर्णन किया गया है, उनकी कामुकता का वर्णन किया गया, काम वासना का वर्णन किया गया है, स्त्री से आसक्ति का वर्णन है, और फिर आगे के श्लोकों में 18 से 23 तक कैसे उनके संतान हुई और कैसे वो उन्होंने देह त्यागा, बस इसका वर्णन है। लेकिन ये महत्वपूर्ण अध्याय है, इससे बहुत कुछ शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो आग्निध्र महाराज राज्य कर रहे थे और उनकी कामना हुई हृदय में कि वे पितृलोक को प्राप्त करना चाहिए उन्हें, और पितृलोक को प्राप्त करके करने के लिए उनकी इच्छा हुई कि अब मुझे विवाह करना है और संतान उत्पन्न करनी है, पुत्र चाहिए मुझे। तो अब इतने बड़े भक्त के पुत्र नारद मुनि के सीधे शिष्य हैं प्रियव्रत महाराज, ब्रह्मा जी जिन्हें ज्ञान दे रहे हैं, शिव जी ज्ञान दे रहे हैं, स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, चार चार महाजनों से जिनका संपर्क हो प्रियव्रत महाराज का, ऐसे व्यक्ति का पुत्र भगवान की भक्ति की कामना क्यों नहीं कर रहा, वैकुंठ जाने की कामना क्यों नहीं कर रहा, पितृलोक की कामना कर रहा कि मुझे पितृलोक जाना है इसीलिए मुझे एक संतान एक पुत्र चाहिए, तो मुझे विवाह करना है इसीलिए मैं तपस्या करता हूं जाके। तो कितनी विचित्र बात है कि इतने महान व्यक्ति का पुत्र वैकुंठ की कामना ना करके क्या कामना कर रहा है, पितृलोक जाने की। कर्मकांडी, पितृलोक में क्या होता है, भोग। पितृलोक व्यक्ति क्यों जाते हैं, भोग करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब ये श्राद्ध इत्यादि किया जाता है, कर्मकांडी श्राद्ध या अन्य श्राद्ध भी, वो केवल इसलिए है कि उनके जो पूर्वज हैं वो पितृलोक में बने रहे, वहां पर भोग करते रहे, जब तक यहां श्राद्ध करते रहेंगे वो पितृलोक में आनंद लेंगे। अर्जुन कहते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय में कि अगर पिंड उदक क्रिया अर्थात ये जो श्राद्ध की क्रिया है ये समाप्त हो गई, लुप्त हो गई, तो पितर जो है पितृलोक से गिर जाएंगे। पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो अगर ये पिंडोदक यानी श्राद्ध की सेरेमनी, श्राद्ध की जो क्रिया बंद हो गई, तो जितने भी पितृलोक में लोग हैं वो नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए पितृलोक जाने की कामना, तो भोग करने की कामना कर रहा इतना महान भक्त का पुत्र, ये कैसे हो सकता, ये संभव है। इसका एक कारण आचार्यों ने दिया कि जिस समय प्रियव्रत महाराज अग्निध्र जो उनका पुत्र होने वाला था, तो जिस समय उन्होंने पुत्र की कामना की या पुत्र उत्पत्ति के लिए पत्नी का संग किया, उस समय वो बड़े कामुक थे। उनकी बहुत प्रियव्रत महाराज हालांकि महान भक्त हैं लेकिन उस समय वो बड़े कामुक थे, उनकी काम वासना तीव्र थी, और इसीलिए ऐसी संतान उत्पन्न हुई जो भोग करना चाहती थी, भक्ति नहीं, वैकुंठ प्राप्त नहीं करना चाहती थी, पितृलोक। तो कितना बड़ा कर्तव्य है माता पिता का कि वो एक ऐसी संतान को जन्म दें, हालांकि वो भक्त हो सकते, भक्तों के घर में भी ऐसी संतान उत्पन्न हो जाती है जो भगवान की भक्ति नहीं करती। इसीलिए कभी कभी भक्त बोलते हैं पता नहीं हमने क्या पाप किए थे, पाप कुछ नहीं किए थे, उस समय चेतना ठीक नहीं थी इसीलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। तो प्रियव्रत महाराज के अग्निध्र इसलिए हुए क्योंकि उनकी चेतना उस समय ठीक नहीं थी। इसीलिए नियम ये है कि संतान उत्पत्ति के पहले प्रभुपाद लिखते गर्भाधान संस्कार आजकल नहीं किया जाता, करना चाहिए, इसीलिए सब शूद्र हैं, सब कामी पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसीलिए माता पिता को, पति पत्नी को यह ध्यान रखना चाहिए कि संतान उत्पत्ति के समय चेतना बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, ये गृहस्थ जीवन में आवश्यक है। भोग के लिए आनंद के लिए करेंगे तो फिर जो संतान उत्पन्न होगी वो केवल भोगी संतान होगी। प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि संस्कार नहीं है इसलिए जो संतान उत्पन्न हो रही है वो वर्ण संकर है, और ऐसे वर्ण संकर केवल समाज के लिए परिवार के लिए उत्पात मचाते हैं बस। तो इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक संतान की उत्पत्ति की योजना माता पिता को करनी चाहिए। आज भी कई ऐसे संस्थाएं हैं जहां माता पिता बड़ी अच्छी तरह समय देखकर, नक्षत्र देखकर, ऐसे समय में संतान उत्पत्ति के लिए एक संघ में आते हैं ताकि उनका जो पुत्र हो आगे चलकर सन्यासी बने। देखिए तो पहले से कब से वो लोग योजना बनाते हैं, अभी तो बालक का बीज भी नहीं बोया गया उस समय से वो योजना बना देगा हमारा पुत्र सन्यासी हो, तो वो वैसा समय देखते हैं, काल देखते हैं, जो क्रियाएं करनी है वो करते हैं ताकि पुत्र सन्यासी हो। तो ऐसे प्रियव्रत महाराज ने किया नहीं तो आग्निध्र ऐसे हुए, तो उस कामना से वो चले गए, वैसे इसको भक्ति की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। भक्ति की दृष्टि से एक भक्त को हमें बहुत अच्छे संस्कार मिल सकते हैं। भक्ति हम लोग करना चाहें तो भक्ति के अच्छे संस्कार, लेकिन उसका उपयोग ठीक से नहीं करें। जैसे प्रियव्रत महाराज को कितना अच्छा परंपरा मिली थी, स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी सीधे, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग ठीक नहीं किया, इसीलिए उनकी संतान ठीक नहीं हुई। इसी तरह हम सबको बहुत श्रेष्ठ परंपरा मिली है, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इतने बड़े बड़े महान लोगों की परंपरा में हम हैं, लेकिन इस भक्ति के जीवन का उपयोग सही नहीं किया तो हमारी जो संतान अर्थात भक्ति जो उत्पन्न होगी वो ठीक नहीं होगी। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो अग्निध्र चले गए एक ऐसे स्थान पर जहां अप्सराएं आया करती थीं ब्रह्मा जी की पूजा करने इत्यादि, तो वहां चले गए कि वहां पर करूंगा, कोई सुंदर स्त्री ब्रह्मा जी भेज देंगे। तो देखिए अब यहां से हम देख सकते हैं कि भोग की कितनी प्रवृत्ति है, कि उन्हें केवल पुत्र नहीं चाहिए था, उन्हें एक सुंदर स्त्री चाहिए थी भोग करने के लिए। इसलिए ऐसी जगह पे गए जहां अप्सराएं आती, क्यों नहीं साधारण किसी स्त्री से कर लिया। व्यक्ति को तो विवाह सुंदर स्त्री से करना ही नहीं चाहिए, है ना, क्यों नहीं करना चाहिए? चिंता में नहीं रहेगा, आराम से रहेगा, आसक्ति नहीं बढ़ेगी। सौंदर्य आसक्ति को बढ़ाता है ना, स्वाभाविक है, व्यक्ति आकृष्ट किससे होता है, इस अध्याय में यही देखा जाएगा, सौंदर्य से। तो इसीलिए अनासक्त होना है तो बड़ा अच्छा है, सुंदर स्त्री से विवाह ही नहीं करना। हाँ, लेकिन फिर ये भी बात है कि फिर सुंदर स्त्रियों से विवाह कौन करेंगे, तो इसीलिए करना पड़ता है, ये भी बात सही है ना? कि अगर सब लोग ये सोचेंगे कि नहीं सुंदर से नहीं करना, तो बेचारे सुंदर स्त्रियों का क्या होगा। तो अग्निध्र चले गए उस स्थान पर, अर्थात ये और दर्शाता है कि केवल पुत्र की कामना नहीं थी, भोग करना चाहते थे, इसलिए सुंदर स्त्री चाहिए, शरीर के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तो ये काम वासनाएं जब बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति इस प्रकार आसक्त हो जाता है। तपस्या करने लगे, बड़ी कड़ी तपस्या, अपने आंखों को आधा खुला हुआ था, नाक की ओर देख रहे थे, जैसे भगवत गीता में कहा गया है, तो बहुत कड़ी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी को पता चला कि ये तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी जान गए कोई सुंदर अप्सरा चाहिए इसको, तो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को भेज दिया, पूर्व चित्ती उसका नाम था, कि जाओ तुम चले जाओ और उससे विवाह करो। तो देखिए ब्रह्मा जी कैसे जान गए, ब्रह्मा जी को तो अभी कहा नहीं था इन्होंने, ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो क्या मांगना है, लेकिन ब्रह्मा जी जान गए। कारण क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के बहुत निकट हैं और भगवान की बातों को सुनते हैं। जैसे भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान हृदय में उनको ज्ञान देते हैं और वो सुन लेते हैं, हमें भी देते हैं, हम सुनते नहीं। हम में और ब्रह्मा जी में एक ही अंतर है, भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी सुन लेते हैं और वैसे ही कार्य करते हैं। भगवान हमें भी ज्ञान देते हैं हृदय में, हम ना तो सुनते हैं ना देखते हैं और ना वैसा कार्य करते हैं। इसीलिए हम यहां पर हैं और ब्रह्मा जी ऊपर हैं। तो ब्रह्मा जी जान गए, परमात्मा ने उन्हें भी कहा कि जाओ उसको कुछ दो, तो पूर्व चित्ती को भेज दिया। अब वो स्त्री आई, तो देखिए जैसे ही वो स्त्री आई, चलने लगी, इधर उधर घूमने लगी, अब ये तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या सारी भंग, पूरा ध्यान उस स्त्री की ओर चला गया उनका। ये इंद्रिय को वश में करना का सही तरीका न अपनाने से ऐसा होता है। जैसे विश्वामित्र मुनि कितनी कड़ी तपस्या, हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, अकेले वन में खड़े होकर, हर एक मेनका के घुंघरों की आवाज, सारी तपस्या भंग। अग्निध्र महाराज कड़ी तपस्या कर रहे हैं, आंखें आधी खुली हुई, नाक के बीच में उनका ध्यान है, भगवान को ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, जरा से आवाज वो घूमने लगी, सारी तपस्या भंग। इसीलिए इंद्रियों को वश में करने का सरल मार्ग है भगवान की भक्ति। उदाहरण दिया गया है कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो क्या उसको इंद्रियां तंग नहीं करती? तो इंद्रियां की तुलना एक विषैले सर्प से की गई है, इंद्रियों की तुलना। तो इंद्रियां विषैले सर्प की तरह डसती रहती है, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनके लिए जो विषैले सर्प है इनका विष निकाल दिया जाता है। सर्प रहते हैं, डराते रहते हैं, लेकिन विष निकाल दिया जाता है। ऐसी इंद्रियां हो जाती है भक्त के लिए। अर्थात भक्त भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्त आंखें फोड़ लेते हैं। हर कोई तो बिल्वा मंगल ठाकुर नहीं बन सकते। बिल्वा मंगल ठाकुर ने यही तो किया, बड़े कामुक थे, काम से आसक्त थे, उस वेश्या के प्रति चिंतामणि, हमेशा उसके पास जाना। और जब उन्होंने छोड़ दिया, चिंतामणि ने उसको कहा कि अरे इतनी आसक्ति तुम्हें भगवान में होती तो भगवान मिल गए होते, मेरे प्रति इतनी आसक्ति, इतनी तेज बारिश में कोई व्यवस्था नहीं, चल कर आ रहे हो, सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए, इतनी आसक्ति तो कृष्ण में होनी चाहिए। सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी आगे चलकर एक स्त्री के प्रति आसक्त हो गए। तो उस समय बिल्वा मंगल ठाकुर ने उस स्त्री को जाकर कहा कि कृपया मेरे ऊपर कुछ थोड़ी दया कीजिए, आपके जो बालों में पिन लगी है वो निकाल के दे दीजिए। उस स्त्री बेचारी घबरा गई होगी। कोई स्त्री सड़क से जा रही है, कोई जाके कहे कि आपके बालों की पिन निकाल के दे दो, वो तो बेचारी क्या तुरंत दे दिया, ये लो जाओ। और बिल्वा मंगल ठाकुर ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि आंखें ही नहीं रहेंगी तो ये काम वासना प्रवेश नहीं करेगी हृदय में। तो हम लोग तो ये नहीं कर सकते, सब संभव भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। हमारा आंदोलन अंधों का आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन भक्ति का आंदोलन है। तो भक्ति ऐसे है कि उसका विष निकल जाता है, इंद्रियां रहती हैं लेकिन विष निकल जाता है। अर्थात प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त भी स्त्रियों को देखते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगा है। दूसरे शब्दों में, अगर हम स्त्रियों को देखकर विचलित हो रहे हैं, भोग की वस्तुओं को देखकर विचलित हो रहे हैं, इसका अर्थ है हमारा मन कृष्ण में नहीं लगा। बस भक्ति करते हुए भी अगर ये भाव है, तो ऐसे इंद्रियों को वश में करने का मार्ग है भगवान की भक्ति। लेकिन अगर दूसरे मार्ग से करने का प्रयास करो, जैसे अग्निद्र महाराज, विश्वामित्र इत्यादि करते हैं, तो फिर उससे कोई लाभ नहीं, उससे इंद्रिय वश में नहीं हो सकती। तो ऐसे अग्निद्र महाराज ने किया, बड़े ध्यान से उस स्त्री को वो देखने लगे कि कैसे वो चल रही है, तो सारा ध्यान उस पर चला गया, मतलब पूरी तपस्या छोड़ दी। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति जब हम करते हैं तो जाने अनजाने में हमारा हृदय शुद्ध होना होता रहता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण एक कथा से सुन सकते हैं। एक बार एक किसान था जो खेत में काम करता था, उसके एक बच्चे थे, लड़के थे। तो उनके लड़के चाहते थे हम पिता की तरह बने, क्योंकि पिता बड़ा नियम वाला था, हर रोज सुबह उठकर जप करना, भगवद गीता पढ़ना, ये उनका नियम था, और फिर कुछ कार्य करते थे। तो पुत्रों ने भी सोचा कि हमें भी पिता की तरह बनना है, तो वे भी भगवद गीता पढ़ने लगे। कुछ समझ में ही नहीं आया भगवद गीता में है क्या, पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं आता था। तो एक दिन जाकर पिताजी को कहा कि आप पढ़ते हैं ठीक है, हम पढ़ते हैं, हमको समझ ही नहीं आता भगवद गीता, तो क्या फायदा है भगवद गीता पढ़ना जप करने से, तो इसलिए हमको बंद कर देना चाहिए, कुछ और करें, लेकिन फिर भी आप करते हैं इसलिए हम आपकी तरह रहना चाहते हैं, तो आप बताइए क्या करें। तो उस समय वो समय था जब कोयलों से खाना पकाया जाता था। तो वो उस समय पका रहा था, एक टोकरी रखी थी कोयले की। तो उसने कहा एक काम करो, ये टोकरी लेके जाओ, कोयले निकाल दो, कोयले फेंक दो नदी में और नदी का पानी भर के ले आओ टोकरी में। तो लड़के बड़े आज्ञाकारी थे, चले गए टोकरी को लेकर भागे। अब वहां पहुंचे और उन्होंने सारे कोयले फेंक दिए, पानी भरा, सर पे रखी टोकरी और लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा, टोकरी में तो पानी नहीं रहने वाला है जब तक पहुंचे, सारा खाली। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि अरे आपने कहा था लेकिन लाए नहीं। पिताजी ने कहा तुम थोड़ा धीरे आए हो गए, जाओ वापस जाओ, फिर से करो। तो फिर से गए, जल्दी जल्दी भाग कर आए, लेकिन फिर खाली। पानी कहाँ टोकरी में रहेगा। तीसरी बार गए फिर भी खाली, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आपको पानी ही चाहिए ना, हम बकेट में ले आते हैं ना, हम बाल्टी में ले आते पानी हम। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो टोकरी में ही चाहिए, फिर से जाओ। तो बेचारे परेशान हो गए, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन, गए फिर से लाए, फिर से वो सब। तो उन्होंने पिता से कहा कि एक बेकार का श्रम आप करवा रहे हैं हमसे, बेकार की मेहनत कर रहे हैं, क्या लाभ हो रहा है, टोकरी में पानी रहने वाला नहीं है, अब बार बार वहां से भेज रहे हैं ला रहे हैं, क्या फायदा, बेकार का श्रम है। तो उसने अपने पुत्रों को कहा कि ये बेकार का श्रम नहीं है, देखो जरा टोकरी को ध्यान से। तो उन्होंने टोकरी को देखा तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो टोकरी कोयले से पूरी काली हो चुकी थी, ये चार बार भागना नदी में से पानी लाने वाने में पूरी साफ हो गई, स्वच्छ हो गई एकदम, उसमें कालिख नहीं रही। तो उसके पिताजी ने समझाया, कुछ समझ में आया, उन्होंने बोला नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा भगवद गीता जब तुम पढ़ते हो तो ये टोकरी में पानी लाने की तरह है, तुम्हें लगता है कुछ रहा ही नहीं, कुछ समझ नहीं आता है हमें, लेकिन भगवद गीता इतनी प्रभावी है कि भले तुम्हें समझ नहीं आ रहा है लेकिन वो अंदर बाहर तुम्हें अच्छी तरह से साफ कर रही है, जैसे टोकरी अंदर से और बाहर से पानी लगने से साफ हो गई। तो भगवद गीता उस नदी की तरह है, उस जल की तरह है कि केवल तुम पढ़ते रहो, अंदर बाहर अपने आप साफ हो जाओगे। ये भक्ति का मार्ग है, हमें केवल भक्ति के नियमों को करते रहना, अपने आप स्वच्छता आएगी, अपने आप ये काम वासनाएं चली जाएंगी। हमें कोई प्रयास नहीं करना है, रोज सोचना नहीं है, एक कोई थर्मामीटर लेकर बैठना नहीं है कि कितनी काम वासना कम हुई कितनी बढ़ गई, ऐसे करते रहेंगे तो कभी कम नहीं होगी, केवल बढ़ेगी। तो कोई आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति में लगे रहना, श्रवण करना, कीर्तन करना, जपा करना, सेवा करना, ये करते करते हमारी जो काली टोकरी है, कई 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 जन्मों से जो काली हो चुकी है, कोयला ही तो भरा है हमने और तो कुछ भरा नहीं इस टोकरी में, और कोयला केवल काला करता है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने क्या कहा सूत गोस्वामी से, हजारों वर्ष यज्ञ करके हमें मिला क्या, केवल मुंह काला हो गया बस, और कुछ मिला नहीं। तो हमने भी कई जन्मों में अपनी टोकरी को काला ही किया, अब समय आया उसको धोने का, इसीलिए हमें पूरी श्रद्धा से उसको धो लेना चाहिए। तो ऐसे अग्निध्र महाराज आसक्त हुए और उसकी ओर ध्यान देने लगे, और फिर उन्होंने उसका गुणगान करना शुरू किया, और देखिए इतने अंधे हो गए काम वासना से कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये पुरुष है कि स्त्री है, ये कोई मुनि है या ये कौन है, ब्राह्मण है। तो ऐसे उसको बोलने लगे, अंधे हो गए एकदम पूरी तरह से। इसको कहा जाता है, लोग कहते हैं ना आजकल की व्यक्ति प्यार में अंधा हो जाता है, एक्चुअली सही है, अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधा। तो अंधे हो गए और कहने लगे उसको कि अरे तुम कितने कितने महान हो, कितने ये तुम धनुष लेकर चल रहे हो जिसकी प्रत्यंचा नहीं है, ये दो धनुष क्यों लेकर चल रहे हो, उनकी बाहों के बारे में कह रहे थे, किसको मारने वाले हो, ऐसे इतना गुणगान करने लगे उनका कि अरे उनकी आपकी तो नूपुर की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि पक्षी चढ़ा रहे हैं, और पता नहीं क्या इतना गुणगान किया अग्निध्र महाराज में, इतना तो हिंदी फिल्मों में भी नहीं होता है, सही में हमारे कवियों ने भी इतना नहीं किया होगा जितना अग्निध्र महाराज ने, उनके एक एक अंग का वर्णन करते हुए कि आप ऐसे हो, एक शांत पे तो कहते हैं कि आपके आसपास ये जो भंवरे घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़े गुरु हो और ये सब आपके शिष्य हैं, बताइए। इतना व्यक्ति कामस्तस्ते हितज्ञाना, जिसका ज्ञान काम वासना में जो बहुत ज्यादा बह जाता है उसका ज्ञान सब चला जाता है, और यहां पर अग्निध्र महाराज उसका उदाहरण है, कामस्तस्ते हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो इस तरह वो अलग अलग उनका वर्णन करने लगे। वो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के वर्णन करते हुए, कि वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारी जो प्रगति है वो रुक जाती है दो कारणों से। इस भौतिक जगत की प्रगति क्या है, प्रगति मतलब कोई धन कमाना नहीं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना नहीं, ये तो सारा टूटने वाला है। ये ऐसी प्रगति है कि बच्चा रेत के पास बैठकर बड़े बड़े महल बनाता है, और क्या होता है जानता भी नहीं है, एक तरह सी लहर आई, लेकिन बच्चा हालांकि समुद्र के तट पर है मगर वो बनाते समय भूल जाता है, बच्चे को याद नहीं रहता कि अभी ये टूटने वाला है, वो तो बड़े हृदय से बनाता है और बनाता 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 एक लहर आती है, धड़ाम सब समाप्त। तो इस भौतिक जगत की प्रगति यही है, हम बहुत उसमें डूब जाते हैं, धन कर रहे हैं, धन बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, तो उसमें इतना व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है कि भूल जाता है पीछे से लहर आने वाली है काल की, क्या बचेगा। जैसे सुनामी आता है ना, आप लोगों ने देखा आजकल सुनामी, हमने बचपन में कभी सुनामी सुना नहीं था, आजकल सुनामी आता है ऐसा समुद्र, क्योंकि पहले कहा जाता था कि समुद्र अपनी सीमा कभी नहीं लांघता, ये कहावत है हिंदी में, समुद्र कभी सीमा नहीं लांघता, तो हम लोग कभी सुना ही नहीं था सुनामी आए, लेकिन देखिए आज हर 4 साल 5 साल बाद कहीं ना कहीं सुनामी आ रहा है, ये हमारे ही बड़े महान कार्यों का फल है, ये हमारी महानता है, इसे जब हो रहा है, जब ये सुनामी आना, अर्थक्वेक होना, ये सब जो है हमारी महानता है, भगवान का नहीं है, भगवान की होती तो पहले भी आते। तो इस तरह जैसे लहर आने वाली वो भूल जाता है, तो वो असली प्रगति नहीं है। किस प्रगति की बात की जा रही है, कृष्ण की ओर बढ़ना। 84 लाख योनियां, ये 84 लाख सीढ़ियां हैं, सबसे ऊपर कृष्ण खड़े हैं, जीव को नीचे से ऊपर तक जाना है, ये असली प्रगति है, सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाना ये असली प्रगति है, चेतना का बढ़ना, चेतना को आगे ले जाना, कामों में लगे रहना, भोग में लगे रहना और धन कमाकर सूट और टाई पहनना, ये तो पशु प्रवृत्ति है, इसीलिए सच्ची प्रगति है कृष्ण की ओर जाना। और प्रभुपाद कहते हैं वो प्रगति रुक जाती है दो चीजों से, एक स्त्री से आसक्ति और दूसरा भौतिक ऐश्वर्यों से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे वो राजा प्रताप रुद्र मिलना चाहते हैं उनसे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं नहीं मिलता ऐसे, ये विषयी व्यक्ति है, विषयी, हालांकि इतने महान भक्त थे लेकिन ऐश्वर्यों में रह रहे राजा हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा इससे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये दो चीजें भौतिकता में आ गई है, भौतिक ऐश्वर्य और दूसरी स्त्री, क्यों, दोनों हमें बंधन में डालती, भौतिक जो ऐश्वर्य है अगर बहुत मिल जाए हम उसके पीछे पागल होते हैं, धन कमाने के पीछे, सत्ता के पीछे, क्या क्या नहीं करता व्यक्ति, देखिए राजनीति में लोगों की हत्याएं करना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, लोगों को मरवा देना, दंगे करवा देना, ये तो सब राजनीति होता है, क्यों, सत्ता बनी रहे, तो कितना पागल हो गया है व्यक्ति सत्ता के लिए, किसी को मार सकता है, हजारों लोगों को मार सकता है, युद्ध करवा सकता है, ऐसे कई उदाहरण अभी हुए हैं, जैसे एक देश के राष्ट्रपति थे, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ कर दिया, अब उनको निकालने वाले थे, तो अब उन्होंने सोचा कैसे रोकना चाहिए, तो उन्होंने दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जब देश युद्ध हो जाता है तो इमरजेंसी हो जाती, कोई उसको निकाल नहीं सकता, तो केवल अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने युद्ध करवा दिया, कितने हजारों लोग मारे गए, ये है भौतिक ऐश्वर्य की कामना। और दूसरा स्त्री, स्त्री से आसक्ति होने से, हम बार बार बताते हैं स्त्री का पुरुष, पुरुष से स्त्री, हाँ ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया, ये गलत है शास्त्र, ये अन्याय है या ये पक्षपात है, नहीं, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो स्त्री आसक्ति, क्योंकि भगवान ने बनाया ही ऐसा है, स्त्री के प्रति आकृष्ट हो जाता है व्यक्ति, प्रभुपाद लिखते तात्पर्य बनाया ही ऐसा है, उसको देखकर स्वाभाविक, देखिए सारे जगत में लोग पागल हैं, केवल थोड़े बहुत चुने हुए लोग हैं जो ब्रह्मचारी और सन्यासी बनकर उससे दूर रहने का प्रयास है, बाकी तो सारी आपकी इंडस्ट्री जितनी चल रही है वो इसी पे चल रही है, सीमेंट का एड होगा उसमें एक स्त्री खड़ी होगी सीमेंट का बैग लेके, अब बताइए क्या करेगी वो आपके घर बनाने वाली है, तो विचार क्या है, लोग सीमेंट का बैग रखेंगे तो देखेंगे नहीं, एक सुंदर स्त्री को खड़ा कर दीजिए सब लोग देखेंगे, फिर सीमेंट का बैग भी दिख जाएगा, सारी जगह यही है। तो हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो काम वासना है, उसको उसका दुरुपयोग करके हमें इस भौतिक जगत में बंधन में डाला जा रहा है बस। इसलिए ये दो कारण है हमारे। तो बहुत अग्निध्रुव महाराज उसकी प्रशंसा करने लगे, उसके उसकी आंखों की प्रशंसा इतनी ज्यादा की है कि सुनने में कभी कभी तो हंसी आती है, शायद ही कोई इतना करता होगा। लेकिन व्यक्ति काम से जब आसक्त तो हो जाता है तो करता है। हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं इतना कोई नहीं करता होगा, लेकिन होता है। जैसे वो वर्णन करने लगे कि आपकी जो दो आंखें हैं ये मछलियों की तरह है, और आपने कानों में मत्स्य कुंडल पहने हुए हैं, मछली के शेप के कुंडल, तो वो शार्क, शार्क समझते हैं आप लोग, शार्क मछली की तरह। तो कहते हैं कि कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि आपका मुख एक नदी है, उसमें चार, दो शार्क मछलियां और दो अन्य मछलियां ऐसे घूम रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। अब बताइए किसको ये लगता है, आप लोगों को कभी तक लगा आज तक देखकर, देखिए कोई, इतने ज्यादा काम आसक्त हो गए। तो बहुत सारा वर्णन करने लगे उनका, उनकी सुंदरता का, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का, उनके नूपुर का, उनके चलने का, सब वर्णन बड़े विस्तार से इस अध्याय में दिया गया। तो ये काम वासना है। तो अग्निध्रुव महाराज के उदाहरण से हम लोग सीख रहे हैं। एक और बहुत सुंदर उन्होंने बात कही, तुलना करते हैं, वो कहते हैं आपके जो, जैसे वो चेहरे को नदी कह रहे थे और मछलियां उसमें तैर रही हैं, और जो आपके दांत हैं सफेद सफेद, वो ऐसा लग रहा है हंस खड़े हुए हैं लाइन में। इसीलिए हमने कहा हिंदी पिक्चरों में भी इतना नहीं कहा गया, कहते हैं वो लोग थोड़ा, लेकिन इतना बहुत ज्यादा हो गया ये। कौन ऐसा कवि होगा जिसने किए, देखिए तो कवि लोग भी इतना नहीं करते। तो अग्निध्रुव महाराज पूरा आसक्त इतना वर्णन कर दिया कि ऐसे ऐसे है। और उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि आपको निश्चित ब्रह्मा जी ने भेजा होगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की मुझसे विवाह करने के लिए, तो आप मुझसे विवाह कीजिए, मुझे ठुकराइए नहीं, आप जहां बोलेंगे मैं चलूंगा आपके साथ। देखिए अभी कुछ हुआ ही नहीं, विवाह नहीं हुआ, कुछ नहीं, प्रॉमिस, जहां आप बोलोगे ना, चारों खाने चित, ऐसा होता है ना जब वो दंगल होता है, क्या बोलते हैं, पहलवानी करते हैं वो लोग, लड़ते हैं लड़ाई में, तो दूसरे को गिराना होता है तो उसको चारों खाने चित, मतलब पृथ्वी पर गिर जाता है। तो ऐसे ही चारों खाने चित, पूर्ण समर्पण। जैसे हम लोग गंगा देवी की कथा में भी सुनते हैं, शांतनु महाराज और गंगा देवी का विवाह हुआ, क्या क्या शर्त रखी गंगा देवी ने, इस अध्याय में गंगा का भी वर्णन, इस अध्याय नहीं, इस स्कंद में गंगा का भी वर्णन आया। तो गंगा देवी ने क्या रखी शर्त, जो भी मैं करूं पूछना नहीं क्यों, बस। बताइए व्यक्ति विवाह कर रहा है और उसी दिन ये शर्त रख ली, जो भी करूं पूछना नहीं, पूछा तो चली जाऊंगी। अब बेचारे शांतनु महाराज मुंह पे हाथ रखे हुए जीवन भर जो भी करो ठीक। तो यहां कह दिया जहां आप बोलोगे वहां चलूं, नरक में ले जाओ, नरक में ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वर्ग में ले जाओ। ऐसे व्यक्ति को ही नरक में ले जाया जाता है, क्योंकि जो इतना आसक्त है जहां कहो वहां चलेंगे, इसको प्रमत्त कहते हैं। प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण मत्त, पागल। एक तो पागल होता है एक व्यक्ति, और एक होता है जिसका कुछ नहीं हो सकता। अग्निध्रुव महाराज वैसे हैं, प्रमत्त, कुछ नहीं हो सकता इनका, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्तियों के लिए ना तो खुद के बल पर ना दूसरों के बल पर वो भगवान की भक्ति कर सकते। मतिर न कृष्ण परतो सतो वा, ना दूसरा कोई कुछ कर सकता है ना खुद कर सकते। तो ऐसे प्रमत्त व्यक्ति हैं। तो प्रमत्त और धीर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक है जो पागलपन में, पागलपन की हद पर चला गया, और दूसरा है धीर व्यक्ति जो भी पागल है लेकिन कृष्ण के लिए पागल है। उसने अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर रखा है कि उसको कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखते। तो अगर हमें पागल होना है तो कृष्ण के लिए पागल होना चाहिए। स्त्रियों के लिए, अप्सरा के लिए पागल होके क्या लाभ है, छोड़ के चली जाएगी थोड़े समय बाद, इसी अध्याय में वर्णन, छोड़ के चली गई, कृष्ण कभी छोड़ते नहीं है। तो अगर पागल होना है तो कृष्ण के लिए पागल होना चाहिए हमें। ये भौतिक चीजों के लिए, स्त्री, धन, ऐश्वर्य, सत्ता, इसके लिए पागल होकर क्या लाभ है? ये तो जाने वाला, मृत्यु हो जाएगी, क्या रहेगा? आप देखिए बड़े बड़े राजनेता इतना सब मेहनत करते हैं, 5 साल रहते हैं, उसके बाद खत्म, फिर कहीं मर जाते हैं, कोई गोली मार देता है, या फिर कहीं एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कुछ भी होता है, कौन बचा सकता है? तो इसीलिए हमें पागल होना चाहिए कृष्ण के लिए। तो प्रमत्त और धीर, ये दो तरह के लोगों का वर्णन है। ये जो व्यक्ति है ये प्रमत्त है, और एक धीर वर्णन करते हैं भगवान भगवद गीता में। तो वो कौन धीर है? जो व्यक्ति सहन करता है, शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत, चाहे कुछ भी हो उसको जो सहन करता है, धीरस्तत्र न मोहयति, उसको धीर कहा गया है कि कुछ भी हो मोह में नहीं पड़ता। जीवन है ठीक है, मृत्यु है ठीक है, देह है ठीक है, नहीं है ठीक है, देहो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मोहयति। तो धीर व्यक्ति कौन है? जो मोह में नहीं पड़ता, और प्रमत्त पूरा मोह में पड़ जाता है। तो इस तरह अग्निध्र महाराज ने बहुत उसका गुणगान किया, उससे कहा कि आप मेरे से विवाह करो, और फिर उसने स्वीकार किया। तो आई उसीलिए कि ब्रह्मा जी ने भेजा था कि ठीक है तो जाकर थोड़ा बहुत उनको आकृष्ट करो, जब वो कहेंगे तो विवाह कर लेना। तो विवाह करने के लिए तैयार हो गई। तो देखिए किस भावना से विवाह किए, यहां ये जो पूरा प्रसंग है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कितने ग्रस्त हो गए थे अग्निध्र महाराज। जैसे कोई ग्रह से ग्रस्त हो जाता है ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो भी एक ग्रह से ग्रस्त है, कृष्ण ग्रह ग्राही, कृष्ण नाम के ग्रह ने ग्रस्त कर लिया हमको। लेकिन यहां ये काम ग्रह ग्राही हो गए हैं, काम नाम के ग्रह ने ग्रस्त कर लिया। दरअसल जीव को बुद्धि दी है भगवान ने, ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं दी है, कोई लोग बुद्धिमान होते हैं कोई नहीं होते, नहीं, सबको दी है, हम उसका उपयोग नहीं करते। हम ये जो बोझा है काम का, वासनाओं का, इच्छाओं का, उनको उठाकर चलते हैं, इसीलिए कष्ट होता है। सरल है, अगर उनको छोड़ दें तो बहुत आराम से जीवन जी सकते हैं। जैसे एक बार एक शिक्षक ने एक उदाहरण दिया, वो एक उसने ग्लास लिया, पानी का ग्लास, और उसने उठाया और सबके सामने रखा, ऐसे पकड़ कर रखा। तो उसने कहा कि अगर मैं एक ग्लास को ऐसे पकड़ूं तो क्या होगा? विद्यार्थी ने, कुछ नहीं होगा, क्या होना? अच्छा ठीक है, अगर 5 मिनट तक पकड़े रहूं कुछ नहीं होगा, 1 घंटे तक पकड़े रहूं आपका हाथ दर्द होने लगेगा, मैं 4 घंटे तक पकड़े रहूं तो आपके हाथ सुन्न हो जाएगा, मतलब थोड़ा उसमें जो शक्ति कम हो जाएगी, अगर मैं दिन भर पकड़े रहूं तो निश्चित पैरालिसिस हो जाएगा। पूरा ऐसे कितनी देर पकड़ सकते हैं? आप लोगों ने कभी प्रयास किया ग्लास को ऐसे पकड़े रही, कितनी देर पकड़ सकते हैं? लगता है कुछ नहीं है। तो उसने कहा हाँ ये सही है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा होगा, लेकिन मुझे बताओ इस पूरे समय में क्या ग्लास का जो वजन है वो बढ़ता गया? तो विद्यार्थी ने कहा नहीं, ग्लास का वजन तो उतना ही है, अगर 100 ग्राम का था तो 100 ग्राम ही रहेगा, तो उसका वजन नहीं बढ़ा। तो फिर क्या बढ़ गया? अगर वही ग्लास 100 ग्राम का पकड़ा हुआ है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हाथ में दर्द क्यों होने लग गया, क्या कारण है? तभी वो सारे ये समझ नहीं आया उनको। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ इसका उपाय क्या है अगर मुझे इससे बचना है? उन्होंने कहा बड़ा सरल है, ग्लास को रख दीजिए, हाथ दर्द होना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा यही सीखना है हम लोग, जब तक इन वासनाओं को, इन इच्छाओं को पकड़ कर रखे हुए हैं, हमारे जीवन में कष्ट है, हाथ दर्द कर रहा है, लेकिन क्या करना है? कुछ छोड़ देना। हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे एक बार की कथा है ना, गुरु चले गए, उनका शिष्य था, उसको भगवत गीता दे गए, जाते जाते पढ़ लेना, चले गए। उसने देखा एक दिन भगवत गीता को चूहा खा रहा है, जप कर रहा था, अरे अरे चूहा खा रहा है भगवत गीता गुरु जी के द्वारा दी गई। तो उसने कहा कुछ तो करना होगा, बिल्ली पाल ली, ये बिल्ली चूहे को मारेगी फिर मेरी भगवत गीता सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब बिल्ली को बचाने के लिए कुत्ता भागने लगा, बिल्ली को कैसे हो दूध पीने लगी, बिल्ली को दूध चाहिए। तो दूध चाहिए तो क्या करें, अब वो बेचारा ये वैरागी आदमी कहां से लाए दूध, और अगर बिल्ली नहीं होगी तो भगवत गीता खराब हो जाएगी, भगवत गीता बचा रही है बिल्ली, तो ठीक है दूध लाना है तो अभी गाय खरीद ली उसने कि चलो गाय ले आए, कहीं से जाके मांग लाए गाय कि मैं तो वैरागी आदमी हूं। तो गाय आ गई तो ये सही है, गाय दूध देगी, बिल्ली दूध पिएगी, बिल्ली चूहे से रक्षा करेगी, भगवत गीता सुरक्षित रहेगी। लेकिन अभी एक कष्ट था, दूध निकाले कौन, गाय थोड़ी ना बिल्ली को बुलाकर पिलाएगी दूध की, हाँ आ जाओ, तो निकाले कौन, तो एक पत्नी चाहिए क्योंकि क्या करे, तो विवाह कर लिया, तो विवाह कर लिया, पत्नी आ गई, अब बड़ा सुखी कि पत्नी है, पत्नी गाय का दूध निकालेगी, दूध बिल्ली पिएगी, बिल्ली रहेगी तो चूहा नहीं आएगा, मेरी भगवद गीता सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब पत्नी आ गई तो उसको तो रहने की जगह चाहिए, पेड़ के नीचे तो नहीं रहेगी, तो फिर घर बन गया, बच्चे हो गए, कमाए सब। अब कई समय बाद गुरुजी आए और गुरुजी देखा छोड़ के तो यहीं गया था, गया किधर, तो घर था तो खटखटाया कि यहां मेरा एक शिष्य रहता, वही सामने आया, अरे तुम कैसे यहां पर, ये क्या हो गया, सब आपकी गलती है, मेरी गलती, भगवत गीता आप देकर गए थे ना, तो आपकी गलती है, क्यों क्या हुआ, अरे भगवत गीता को चूहा काट रहा था, चूहे से बचाने के लिए बिल्ली लाए, बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय लाए, गाय का दूध दहने के लिए पत्नी लाए, बाकी उसके बाद तो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो गुरु ने कहा ठीक है, वो बेचारे बाहर गए और एक पेड़ था उसको पकड़ लिया और जोर से चिल्ला लगे, छोड़ो 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 मुझे छोड़ो। शिष्य सोचा शायद इनको धूप के कारण कुछ दिमाग पर असर हो गया, तो शिष्य आके बोला गुरु महाराज क्या हुआ, अरे छोड़ नहीं रहे, छोड़ो छोड़ो। तो बोले आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आपको छोड़ना है, आप पेड़ को क्यों बोल रहे हैं छोड़ने के लिए। बोले वही तो तब से समझा रहा हूं तुम्हें, तुमने ये सबको पकड़ा हुआ है, भगवत गीता के कारण नहीं हुआ है, ये तुमने पकड़ा हुआ है सबको, छोड़ो उसको। तो यही चीज है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं को बनाए रखेंगे, जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं है, हम सोचते हैं कि जैसे हम जी रहे थे बस वैसे ही जिएंगे, हाँ उसमें अगर समय मिला तो भक्ति कर ली, अब बन गए मंदिर आने लगे हैं इस्कॉन में तो चलो सुबह चले जाना चाहिए, जाकर थोड़ा बैठ जाएंगे, और क्या, नहीं तो फिर घर पे टीवी देखेंगे, चलो इस्कॉन में टीवी देख, अब इस्कॉन में हम लोग कुछ प्रवचन सुन लेते हैं। जीवन को बदलना है, छोड़ना है जो पकड़ कर रखा है उसको, और तब फिर बदलाव आएगा। तो ऐसे उन्होंने अग्निद्र महाराज ने जब उनसे कहा कि विवाह कर लीजिए, तो तैयार हो गई, उन्होंने विवाह किया, तो काफी समय तक वो उसके साथ रहे और उनसे उनको 9 पुत्र हुए, जिनमें से आगे वर्णन आएगा भी नाभि महाराज का, फिर उसके बाद वर्णन उनके पुत्र ऋषभदेव और फिर भरत महाराज का। तो 9 पुत्र हुए जिनमें नाभि सबसे बड़े थे, और ऐसे जब पुत्र हो गए, पुत्र बड़े हो गए, अब इनकी मृत्यु का समय आया। तो देखिए वो तो चली गई, वर्णन है कि उन्होंने 9 पुत्रों को जन्म दिया, उसके बाद जब 9 पुत्र थोड़े बड़े हो गए वो चली गई छोड़ के, दोनों को, अग्निद्र को भी छोड़ दिया, पुत्रों को भी, 9 पुत्रों को भी छोड़ के चली गई। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये अप्सराओं का कार्य है, वो तो आई थी उसी लिए, जैसे वो वर्णन करते हैं कि जब विश्वामित्र और मेनका साथ में रहे तो उनकी एक पुत्री हुई शकुंतला, और जब समय हो गया तो मेनका चली गई वापस, शकुंतला को भी छोड़ दिया, विश्वामित्र को भी छोड़ दिया, क्योंकि वे लोग तो अप्सराएं हैं, उनको नियम पृथ्वी के नियम नहीं लगते हैं, तो वो अपने कार्य के लिए आई थी, करके चली गई। तो ऐसे ही पूर्व चित्ती, उसने जब जन्म दे दिया, थोड़े बड़े हो गए तो वो चली गई, और जाने के बाद फिर अग्निद्र महाराज उसके विरह में, उसके स्मरण में, देखिए अगर विरह होनी, कृष्ण की विरह हो ऐसी, तो कितना लाभ हो जीव को। हमें विरह होता है पत्नी चली गई, बच्चा चला गया, कभी ये विरह नहीं होता कि कृष्ण कहाँ होंगे, अभी जंगल में गए होंगे, उनके पांव में कांटा लग रहा होगा, उन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया, कैसे होंगे कृष्ण, क्या कर रहे होंगे, ये विरह कभी नहीं होती, कब उनसे मिलेंगे। भक्ति में आने के बाद भी ये विरह नहीं आती है, तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी विरह को उत्पन्न करें भगवान के लिए। तो बहुत विरह करने लगे और सोचने लगे, तो अंतिम समय भी आ गया उनका, और अंतिम समय में भी वो उसका ही स्मरण कर रहे थे कि हाँ वो कहाँ गई है, उसी के साथ रहना है। तो इसीलिए इसमें वर्णन है कि क्योंकि उन्होंने इतना स्मरण किया अपनी पत्नी का, तो फिर वे वहीं चले गए पितृलोक में जहाँ पर उनकी पत्नी थी, ऐसा वर्णन किया गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि पत्नी का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है एक पारिवारिक जीवन में। पत्नी का उद्देश्य है कि वो पति को आध्यात्मिक प्रगति में सहयोग करे, ये प्रमुख कर्तव्य है। तो पत्नी उसे नरक भी ले जा सकती है, जैसे यहां पर पूर्व चित्ती को कहा जहां चाहे ले जाओ पूर्ण समर्पण, तो पत्नी नरक भी ले जा सकती है भोगों में पड़वाकर उसको, या फिर पत्नी उसको भगवान की भक्ति में। तो सबसे बड़ा कर्तव्य पत्नी का यह है कि वो सहयोग करे पति की आध्यात्मिक प्रगति में, और पति भी पत्नी को सहयोग करे। तो ये व्यवहारिक भी होना चाहिए, प्रैक्टिकली दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना। अगर एक नहीं उठा मंगल आरती के लिए तो दूसरे को उठाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक उठ रहा है उसकी दूसरे की इच्छा नहीं है तो बोला बंद करो अलार्म हम भी सो जाते हैं, तो आप भी सो जाओ मैं भी सो जाऊं जीवन सफल। ये नहीं, ये पारिवारिक जीवन नहीं है। पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक प्रगति आवश्यक, तो दोनों का उद्देश्य, दोनों को सहयोग करना चाहिए। अगर पति किसी आध्यात्मिक पथ पर लगा है तो पत्नी को पूर्ण सहयोग करना कि वो भी आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि जो पति करता है उसका आधा तो वैसे ही उसको मिल जाता है पत्नी को केवल सहयोग करने से, तो फिर कम से कम सहयोग तो कर देना चाहिए। तो पत्नी का उद्देश्य जीवन का ये होना चाहिए कि दोनों, वैसे विवाह का यही उद्देश्य है कि दोनों एक साथ मिलकर भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। और अगर ये उद्देश्य नहीं है पारिवारिक जीवन का तो फिर वो पशु जीवन है, केवल भोग पर आधारित जीवन पशु जीवन है। तो इसीलिए हरेक का कर्तव्य है, और जब हमें ये कर्तव्य पता चले तुरंत उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा। ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो शादी हुई है थोड़ा 10 साल निकल जाए तब फिर मैं मंदिर जाना शुरू करूंगा या तब मंदिर लेके जाऊंगा पत्नी को, नहीं, जैसे पता चला उसी समय विवाह हुआ अगले दिन से ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। या फिर वृद्धावस्था में पता चला जीवन निकल गया 40 साल, पता ही नहीं चले कब निकल गए, विवाह हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि उद्देश्य था भगवान की भक्ति, उस समय तीव्रता से करना चाहिए। तो इसीलिए ये उद्देश्य है पारिवारिक जीवन का कि भगवान की प्राप्ति करें, ऐसी काम वासनाओं में फंसे नहीं। कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थयश्चेह कर्म भी। तो एक ही कर्म हमें करना चाहिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान के प्रति और अपनी स्थिति के प्रति जागरूक होना और ज्ञान लेना, यही हमें भक्ति में करना चाहिए। और ये हम तब कर सकते हैं, भक्ति तब कर सकते हैं जब हम अपनी स्थिति को समझें। हम लोग अपनी स्थिति को ही नहीं समझते हैं कि हम लोग कैसी अवस्था में हैं। जैसे एक बार एक राजा जेल में चला गया मिलने के लिए, देखने के लिए कि कैसे हैं। तो सब कैदियों से पूछ रहा था तो क्या हुआ, तो उनको बोले मुझे फांसी की सजा दी गई। क्यों दिया गया? दरअसल वो जज ठीक नहीं था, उसने मुझे, दरअसल मैंने कुछ किया नहीं लेकिन वो जज ठीक नहीं था। दूसरे से पूछा क्या, बोले मैंने कुछ नहीं किया, वो तो उनको गलतफहमी हो गई थी, गलती से पकड़ लिया। अतः जिसके पास भी गया सब यही कह रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं। एक व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा कि तुम्हारा क्या, बोले मैंने गलती किया, सही है मैं यहां पर हूं मतलब मैंने गलती किया, जेल में लाए हैं मतलब मेरी गलती होगी, तभी तो लाए हैं, तो उसने स्वीकार किया। तो राजा ने जाकर जेलर से पूछा वो व्यक्ति के बारे में, तो उसने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छे से आचरण करता है, सब ठीक है। राजा ने कहा छोड़ दो उसको। अरे छोड़ दो, बोला छोड़ दो। तो राजा बोले तो राजा के शब्द तो वेद वाक्य, तो उसने छोड़ दिया। तो ये हमारे लिए है कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि हम जेल में हैं। हम लोग तो यही नहीं समझते कि हम जेल में हैं या सही कारण से हैं। हम तो सोचते भगवान ने बड़ा मेरे साथ अन्याय किया जो यहां भेज दिया, कितने कष्ट में भेजा। नहीं, भगवान ने कोई अन्याय नहीं किया, जज ने कोई अन्याय नहीं किया, तो आपकी गलती है। तो इसलिए ये समझना कि हम जेल में हैं, कष्ट में हैं, और उद्देश्य है यहां से बाहर जाना। जब तक ये नहीं समझेंगे जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां करते रहेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं है जीवन का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसीलिए इस चीज को समझिए, भक्ति का पालन कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। यही इस अध्याय का सार है।